आपको याद है पिछले दिनों में प्रकाश सभा के सीरीज हमने आरंभ की थी, तो आज हम चार अध्याय में जाना चाहेंगे और चार अध्याय में कुछ बातों को सीखेंगे। अब यहाँ पर तरह से लिखता है वो, अगर हम इन चार अध्याय को विभाजित करें तो पहला पद जो है चार अध्याय का, यूहन्ना को परमेश्वर एक विशेष निमंत्रण दे रहा है। दूसरे और तीसरे पद में स्वर्गीय सिंहासन दिखाए जा रहे हैं जो सामने परमेश्वर के झुक के आराधना कर रहे हैं। उसके बाद हम चार जीवित प्राणियों को देखते हैं छठे और आठवें पद में चार अध्याय के, और फिर उसके बाद 9 पद से लेकर 11 पद तक ये सब मिल करके परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता की महिमा कर आराधना कर रहे हैं। सो ये 11 पद इस तरह से हम एक एक करके देख सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर की सहायता से थोड़े समय में कुछ चीज़ों को हम समझना चाहेंगे, और मेरे साथ अगर पदों में चलेंगे ध्यान देंगे तो ज़रूर ये समझने में आएगा। सो प्रकाश के वाक्य पुस्तक, मैंने आपसे बताया था, हमने देखा था कि दानियल की पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं तो दानियल की पुस्तक में ये सारी चीज़ें कुछ मोहर से बंद कर दी गई हैं, लेकिन जब हम प्रकाश वाक्य में आते हैं वही बातें जो बंद कर दी गई थी उस समय, अब पर्त बाई पर्त एक के बाद एक वो खोली जा रही हैं, और वो खोलने का अधिकार पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को है, जिसको हम आगे छठे पद से और देखना चाहेंगे। लेकिन चार अध्याय 5 अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, जिसमें फिर से वो परमेश्वर की आराधना को हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब कलीसिया उठा लेगी। तीसरे अध्याय के 21 पद में अंतिम बार कलीसिया शब्द आया है, और इन 3 अध्याय में करीब 18 बार कलीसिया शब्द आया है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, और 21 पद में इस तरह लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो तीसरे अध्याय के 22 पद में ये अंतिम बार हम इस कलीसिया के शब्द को देख रहे हैं। उसके बाद यहां से लेकर के आप 21 अध्याय तक बीच में कहीं कलीसिया को नहीं देखते। चित्रण क्या है? कलीसिया इस समय उठाई जा चुकी है, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को उठा लिया है, और कलीसिया को उठाने के बाद कुछ घटनाएं हो रही हैं। वो घटनाएं जिसको कहा जाता है क्लेश और महाक्लेश। पूरा संसार में विपत्ति आएगी, और विपत्ति और महाविपत्ति, क्लेश और महाक्लेश आएगा, और उस क्लेश में किस प्रकार से संसार जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को पहले उठा लिया है और उस क्लेश में से जाने से के लिए कलीसिया बचाया है। मेरे प्रियो, यहां पर कलीसिया क्या है? कलीसिया लोग हैं, भवन नहीं है। भवन तो आराधना करने का एक स्थान है। कलीसिया लोग हैं जिन व्यक्ति ने, केवल जन्म की बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस स्त्री ने, जिस पुरुष ने, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पापों की क्षमा को मांगा, पश्चाताप किया और उसको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो परमेश्वर की कलीसिया है, वो परमेश्वर की देह है। परमेश्वर उन्हीं को स्वर्ग में उठा ले जाएगा, अपनी कलीसिया को। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, यदि आपने पश्चाताप नहीं किया, और अगर आज प्रभु आ जाए तो जिन्होंने विश्वास किया है उसके अनुग्रह के कारण, उसकी दया के कारण, अपने कामों के कारण नहीं, उसके अनुग्रह, उसकी दया के कारण वे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और जिन्होंने उस पर स्वीकार नहीं किया वे यहीं छोड़ दिए जाएंगे, और उनको सतावनी और महासतावनी का मेल से होकर जाना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप बताता है। सो आप ध्यान दीजिए कि इस समय कलीसिया उठा ली गई है ना। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14 अध्याय में कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मत घबराओ, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक स्थान मैं तैयार करूंगा, ताकि मैं जब फिर आऊं तो आकर मैं तुम्हें अपने साथ उस स्थान पर ले जाऊं। सो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से इस बात को कह दिया था कि तुम मत घबराना, मत व्याकुल होना, मैं जा रहा हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करूंगा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा, उसने स्वयं कहा मैं फिर आऊंगा, न केवल वहां, लेकिन जब प्रेरित काम में आते हैं, और प्रेरित काम उसके पहले अध्याय में, पहला अध्याय उसके 8 पद से, जब प्रभु यीशु मसीह उठा ले गए स्वर्ग, कहता है जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तुम यहीं ठहरे रहना, तुम सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पाने के बाद उसने कहा तुम दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें प्रभु यीशु मसीह के जूटने का गवाह बनाती है, सबसे पहली बात। और यौहन्ना अगर 14, 15, 16 आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा पवित्र आत्मा के काम क्या है। और तब उसके बाद उसने कहा, जब दो स्वर्गदूत वहां खड़े थे, उसने कहा शिष्यों को कहा, हे गलील, तुम क्या देख रहे हो? जिस प्रकार से तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते देखा है, उसे फिर से तुम आते देखोगे। उस समय भी कहा फिर से तुम आते देखोगे। तो प्रभु यीशु मसीह पुनः आएंगे। इसका संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे स्वीकार ना करे, चाहे इनकार करे, लेकिन जो सत्य सत्य है, वो अटल है, प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे। और एक विश्वासियों के लिए ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम उनके साथ आसमान पर उठा ले जाएंगे, अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे। पहला थिस्सलुनीके उसका 14 अध्याय, मैंने कहा करीब 18 अलग अलग बाइबल के पद हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में वर्णन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने साथ कलीसिया को उठा ले जाएंगे और कलीसिया उसके साथ अनंत काल तक रहेगी। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय, थिस्सलुनीके की पत्री को अध्ययन करते हुए हर अध्याय में, हर अध्याय के आखिरी भाग में जरूर एक न एक दो पद जरूर आए हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित हैं। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय 14 पद से पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 14 पद से, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोयों से कदापि आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तोरी की आवाज के साथ स्वर से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा ले जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे, इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु आएगा और जब आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर मिलेंगे, उठा ले जाएंगे और सदा तक, उस सदा काल तक उसके साथ रहेंगे। सो बार 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 बार, अब अगर और भी हम विस्तार में जाएंगे तो देखते हैं किस तरह से प्रभु का पहला आगमन होगा, फिर उसके बाद प्रभु अपने विश्वास को ले जाएगा, कलीसिया को ले जाएगा, दोबारा फिर आकर तब उसके साथ विश्वासी लोग भी आएंगे और तब पूरे संसार के सारे समस्त लोग जो जैसे भी मर गए हैं वो जी उठेंगे और उनका न्याय होगा, वो अंतिम बात होगी। और तब उस समय न्याय के समय प्रभु यीशु मसीह शैतान को नाश करेंगे और अनंत काल तक प्रभु का राज स्थापित किया जाएगा और शैतान का सर्वनाश किया जाएगा। सो ये है। तो प्रकाश वाक्य की पुस्तक को पढ़ते समय पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय के बाद इस बात को ध्यान रखिए कि अब कलीसिया उठा ली गई है, विश्वासी लोग उसके साथ सनातन काल के लिए उसके साथ स्वर्ग में राज कर रहे हैं। और उसके बाद अब कुछ घटनाएं घट रही हैं। वो घटनाएं बाइबल के विद्वानों का मत ये है 3.5 प्लस 3.5, 7 साल, लेकिन 7 साल मनुष्य की गणना है, पर परमेश्वर का वचन कहता है पहले पत्र में कि परमेश्वर की दृष्टि में 1 दिन 1,000 वर्ष के बराबर है, 1,000 दिन 1 दिन के बराबर है। और इसलिए हम उस दिनों को उस तरह से नियमित नहीं करते, यद्यपि दैनियल की पुस्तक में भी उन सप्ताहों का वर्णन है। दैनियल की पुस्तक में भी मैं बार बार कहता हूं कि दैनियल, यज्ञेल और प्रकाशवाक्य, ये तीनों पुस्तकों को साथ पढ़ने में, अध्ययन करने में तब और भेद की बातें पता चलती हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, दैनियल की पुस्तक कहीं आकर यहां रुक गई है इतिहास के साथ, अब प्रकाशवाक्य की पुस्तक उस इतिहास के साथ साथ जो भविष्यवाणी है उसको आगे बढ़ा रही है। तो प्रोफेसी दैनियल की पुस्तक में भी है, 12 अध्याय में 6 अध्याय इतिहास है, हिस्ट्री है, और 6 अध्याय प्रोफेसी है, लेकिन कुछ उस इतिहास के साथ प्रोफेसी रुक गई, अब प्रकाश वाक्य में आगे बढ़ रही है। तो 4 अध्याय में आइए, इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात, कि कलीसिया अब स्वर पर उठा ली गई है। मैंने दृष्टि की और देखो स्वर में एक द्वार खुला हुआ है, तुरी की ध्वनि के समान जो प्रथम आवाज मैंने सुनी, उसने कहा ऊपर आ। परमेश्वर के वचन में हम एक बात को पाते हैं, अगर आप निर्गमन की पुस्तक को आप अध्ययन करेंगे तो निर्गमन की पुस्तक में जब जब परमेश्वर ने मूसा से कोई बात करनी चाहिए, और जब 10 आज्ञाएं देनी थी, जब कोई संदेश देना था, कोई, उसने हमेशा मूसा को ऊपर बुलाया। जैसे उदाहरण के लिए 19 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया, ऊपर चोटी बुलाकर अकेले बात करी और वहाँ बहुत बड़ी आग को दिखाई दिया। सो नए नियम में केवल दो जन हैं जिनको परमेश्वर ने ऊपर बुला करके विशेष रीति से बात की है। एक पौलुस है जिसका पहला क्रंथ उसको 12 अध्याय में हम देखते हैं, पहला क्रंथ उसको 12 अध्याय में पौलुस वर्णन करता है कि मुझसे परमेश्वर ने कहा तू आ और उसने भेद की बातों, तो बहुत सारी बातें पौलुस से परमेश्वर ने कही हैं और उस उन्हीं बातों को पौलुस ने बाद में आगे चल करके मेरे और आप तक पहुँचाया है और कई बार कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से मिली, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात प्रभु से मिली, वो इस बात को कहता है। सो परमेश्वर ने उसको भी ऊपर बुलाया जो पहला क्रंथ 12 अध्याय में, यहां पर भी यूहन्ना को। तो नए नियम में केवल दो जन हैं, एक पौलुस प्रेरित है और एक ये यूहन्ना प्रेरित है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, जिसने यीशु मसीह को देखा, जिसको यीशु मसीह ने विशेष रीति से अपना मित्र कहा और उसने सारी बातों को देख करके। और सबसे अधिक आयु का जीवन जो था वो यूहन्ना, इसी यूहन्ना का था जो लगभग 96 साल जीवित रहा। पौलुस तो कई साल पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कहता है ऊपर आ, मैं तुझे उन बातों को दिखाऊंगा जिनका इसके पश्चात होना अवश्य है। अब परमेश्वर यूहन्ना को वो बातें दिखा रहा है किन के पश्चात कलीसिया स्वर्ग में उठा ली गई है। अब संसार में क्या कुछ घटने वाला है, क्या कुछ घटेगा, उन बातों के सारा वर्णन अब यहां पर परमेश्वर ने इस यूहन्ना को दिखाया है। कहता है कि मैं उन बातों को दिखाऊंगा जो इनके पश्चात होना अवश्य है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये अवश्य ऐसा होगा, मनुष्य उसको स्वीकार करे ना करे, मनुष्य माने या ना माने। मनुष्य संसार में आज तो बहुत रीति से नहीं मानता, मैं अक्सर साधु सुंदर सिंह के बारे में बात करता हूं, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह से स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करी और उसके बाद उसको अपना सेवक बना लिया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एक दिन वो भी बहुत अधिक विरोध में था, विद्रोही था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी चुना और वो उसका अनुयायी बन गया। आज कितने ऐसे संसार में लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, उसके विरोध में होकर हर तरह कार्य करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से परमेश्वर उनको चुन लेता है। और इसीलिए मैं और आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग मसीहों को सताते हैं कि प्रभु काश आप उनकी आंख खोल दे ताकि वो तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को समझ सके और वो भी पाप से पश्चाताप करके तेरे जीवन को प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, वो ये चाहता है कि हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले और वो बच सके। ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम है और वही आत्मा मेरे और आपके जीवन में भी होना है कि हम उस लोगों के लिए इसी प्रकार से प्रार्थना कर सकें, चाहे कितने अधिक हमारे विरोधी हों, विद्रोही हों, कैसा कुछ भी हो। सब आगे चल करके वो कहता है, अब मैं तुरंत आत्मा में आ गया और देखो स्वर्ग में एक सिंहासन रखा था, स्वर्ग में एक सिंहासन रखा था और उस पर कोई बैठा हुआ था। और इस 4 अध्याय और 5 अध्याय में लगभग 13-14 बार सिंहासन शब्द आया है इस 2 अध्याय में। सिंहासन मुख्य है। ये जो प्रकाशवा की पुस्तक, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एक चित्रणात्मक तरह से ये लिखी गई पुस्तक है। कोई चीज सामने हम देख रहे हैं और किस रीति से, तो वो चित्रात्मक रूप से देख करके। और कई बार जब आप कल्पना में आइए और कल्पना करते हुए आप प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर विराजमान होते देखिए, तो थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए, अगर एक सिंहासन है और सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है और बहुत सुंदर सिंहासन है, सब कुछ है, तो क्या आपके जीवन की प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका इमोशंस क्या होंगे। कई बार जब हम इस कल्पना में आकर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो सकारात्मक प्रभाव डालता है और उससे हमारा विश्वास और अधिक बढ़ता है। और कई बार एक विश्वासी को एक वचन के अनुसार जब हम अध्ययन करते हैं उन बातों को, सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब इसराइल लोग चले जा रहे थे और फिरौन की सेना उनके पीछे भागी थी और जब फिरौन की सेना उनके पीछे भागी और वो यरदन पार करके जाने लगे, और जब यरदन पार करके जाने लगे तो यरदन 2 भागों में हो गई, फिरौन की सेना उनके पीछे भाग रही थी, उनको मारना चाह रही थी और ये बचाव के लिए आगे जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, ये चित्रण देखिए, अगर सामने में मेरे और आपके हो रहा होता तो कैसा लगता। लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर ने उस फिरौन की सेना को, सारी सेना को नाश करा, और नाश करने के बाद उनको विजयी बनाया, और तब उसके बाद उन्होंने गीत गाया। तब 16 अध्याय में हम पाते हैं आगे चल करके क्या नाम गिनती में कि किस प्रकार से उन्होंने गीत गाया, और गीत गाते हुए क्या कहा, शत्रु ने चाहता कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें नाश कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें विजय दे। और उस कल्पना करते हुए जब हम अपने ऊपर लागू करते हैं तब हमारे हृदय में एक परमेश्वर की आराधना की आत्मा उत्पन्न होती है। हम तब कहते हैं ओ परमेश्वर धन्यवाद हो कि मैं भी इसी स्थिति में था, तूने मुझे बचाया है। सो हमें ध्यान देना है। तो यहां पर ये स्थिति है। अब क्या है, लेकिन उस सिंहासन के साथ क्या क्या है, सिंहासन में कोई बैठा हुआ है, वो जो बैठा था यशव और माणिक के सदृश दिखाई देता था, और उस सिंहासन के चारों ओर पन्ना के सदृश एक मेघ धनुष दिखाई देता था। वो मेघ धनुष इस तरह से बना हुआ है, ये जो जितने हीरे हैं ये यशव माणिक। अगर आप निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे 25-26-27 अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक बहुत ही सुंदर पुस्तक है उसका ध्यान करने के लिए। और जब पहले परमेश्वर 10 आज्ञाएं उनको देते हैं, उसके बाद परमेश्वर अपने उपासना के लिए मंदिर के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से वाचक के संदूक को बनाना, किस प्रकार से मिलाप वाले संदूक को बनाना, किस प्रकार से याजक के पहरावे को बनाना। और जब याजक का पहराव बनता था तो उस याजक के पहराव में ये सारी चीज जड़ी जाती थी। करीब 12 पत्थर थे जो बहुमूल्य पत्थर थे, जिनको आप हीरे भी खोलते हैं, वो उस वस्त्र पर लगाए जाते थे उनके याजक के वस्त्र पर। और ये इस बात दिखाई देता है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को बहुमूल्य बनाता है, और किस प्रकार से उनकी जो वैभव है किस प्रकार से परमेश्वर महिमित करता है। और मेरे प्रिय इस बात को देखिए, जब पत्रस की पत्री में आते हैं तो पत्रस कहता है कि हम चुने वंश की याजकों का समाज है, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है और याजकों का समाज बनाया है। और तब हम देखते हैं कि अगर याजकों का समाज परमेश्वर ने मुझे बनाया है और याजक परमेश्वर अगर महिमा के का चित्रण प्रकट करता है तो मेरा और आपका जीवन किस प्रकार से उसकी महिमा का जीवन व्यतीत करना है, मुझे किस प्रकार से इस संसार में होकर रहना है। सो यहां पर जो बैठा हुआ है कौन बैठा हुआ, परमेश्वर का सिंहासन है, और उस परमेश्वर के सिंहासन में किस प्रकार से। और तब क्या कह रहा है, तो उस सिंहासन के चारों 24 सिंहासन थे, 24 और सिंहासन है, उन 24 सिंहासन में मैंने 24 प्राचीनों को श्वेत वस्त्र पहने तथा सिर पर सोने के मुकुट धारण किए देखा। श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र कौन किसके लिए, परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने लहू से मुझे और आपको शुद्ध करके मुझे और आपको श्वेत वस्त्र मलमल के वस्त्र दिए हैं, यह शायद इस बात को वर्णन करता है। सो ये वो लोग हैं जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू में आ करके अपने आप को शुद्ध किया है, जिनके वस्त्र जो गंदे वस्त्र थे उसको हटा करके परमेश्वर को शुद्ध किया, सब श्वेत वस्त्र बनाए। श्वेत जो है शुद्धता के प्रतीक है, महिमा का प्रतीक है, परमेश्वर ने उनको दिया है। और ये 24 प्राणी परमेश्वर के जो बाइबल के विद्वान है उनका मत है कि 12 गोत्र और 12 प्रेरित, 12 गोत्र और 12 प्रेरित। पुराने नियम में 12 गोत्रों के बारे में पढ़ते हैं, नए नियम में 12 प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं, और ये मिलके 24 होते हैं, और जो पूरे संसार का चित्रण दिखाते हैं कि इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो उसके चुने हुए लोग हैं, चाहे वो प्रेरित कहलाए जाते हैं और उसके याजक कहलाए जाते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से शुद्ध किया है, उनको श्वेत वस्त्र बनाए हैं, मलमल के वस्त्र बनाए हैं वे हैं, और उनके सिर पर उसने महिमा का मुकुट दिया है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी की जब वेशभूषा देखते हैं, कई बार हम अपने विश्वासी जीवन को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से मुझे और आपको उस श्वेत वस्त्र से सुशोभित किया है, उस सुंदर मुकुट से सुशोभित किया है। मुकुट महिमा का प्रतीक है, मुकुट गौरव का प्रतीक है, मुकुट सम्मान का प्रतीक है। परमेश्वर ने अपने में मुझे महिमा में शामिल किया है, परमेश्वर ने अपने में मुझे गौरव में शामिल किया है, परमेश्वर ने अपने सम्मान में मुझे शामिल किया है। सो ये विश्वासियों का चित्रण है, वे वो लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से शुद्ध किया है। मेरे प्रियो, आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, छोटे हो बड़े हो, कहीं से भी कैसे हो, पढ़े हो अनपढ़ हो, ज्ञानी हो ज्ञानी, कुछ भी हो, मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान है जिसने उसके पवित्र लहू से अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त किया है। इस संसार में रहकर हम छोटे बड़े बन सकते हैं, धनी और गरीब बन सकते हैं, लेकिन जब प्रभु के राज में जाएंगे तो वहां पर सब लोग एक समान होंगे। परमेश्वर की दृष्टि में सब समान पाए जाते हैं और ये परमेश्वर इस प्रकार से मुझे और आपको सुशोभित कर रहा है। तो यहां पर हम बात को देखें, तब आगे चल करके उस सिंहासन से बिजलियां, गर्जन और बादलों की गड़गड़ाहट निकल रही हैं। और अभी बिजलियां, बादलों की गड़गड़ाहट निकलती हैं, ये एक प्रकार के परमेश्वर के न्याय के व्यवहार को दिखाता है। न केवल परमेश्वर सुशोभित करता है, लेकिन बिजली और थंडर जो है, इंग्लिश में थंडर शब्द आया है, थंडर जो है परमेश्वर के वो अधिकार को, जिस अधिकार में होकर के वो अपना न्याय करेगा, उसका न्याय भी बहुत ही गंभीरता के साथ होगा। यदि उसने मुझे और आपको अपने पवित्र बहुमूल्य लहू से खरीदा है, मुझे और आपको नया बनाया है, मुझे और आपको अपनी संतान बनाया है, तो मेरे प्रियो वो संसार का न्याय भी बड़ी गंभीरता से करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसका न्याय होना ठहराया जा चुका है। एक बार उसका न्याय होना ठहराया जा चुका है। सो न्याय उन लोगों का भी होगा जो अन्य जाति हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को निभाया, और न्याय उनका भी होगा जो विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। तुमने प्रभु को स्वीकार तो किया है, लेकिन कैसे तुमने संसार में जीवन को व्यतीत किया? तुमने किस प्रकार से केवल उसको स्वीकार करके तुम इसी बात में आनंदित थे, या तुमने अपने जीवन को, अपने उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा दिन दिन का जीवन किस प्रकार से परमेश्वर के महिमा के लिए था? अभी हम सुन रहे थे कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम हर समय उसके साथ, हमारा उसका एक घनिष्ठ संबंध हो, निकटता का संबंध हो, हम उसके साथ रह सकें। सो यहां पर ये परमेश्वर एक दिन मेरा और आपका न्याय करेगा। तब आगे चल के वो कहता है कि सिंहासन के सामने 7 दीप जल रहे थे जो परमेश्वर की 7 आत्मा हैं। और बार बार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यदि हम यशाया में जाएं, यशाया उसका 11 अध्याय, ये किस तरह से इन 7 आत्माओं को वर्णित किया गया है। उसके पहले पद से हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। वो कहता है, तब यशे के ठुन में से एक अंकुर फूट निकलेगा, हाँ उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। तब यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर छाया करेगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए यहोवा का आत्मा पहला, बुद्धि का आत्मा दूसरा, समझ का आत्मा तीसरा, युक्ति का आत्मा चौथा, पराक्रमी का आत्मा पांचवा, और ज्ञान का आत्मा छठा, और यहोवा का भय का आत्मा सातवां। ये 7 आत्मा हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, उसकी सेवा में, उसकी प्रभुता में, उसके उस गुणों को दिखाती हैं जिसमें हो करके वो इस संसार में रहकर सेवा करेगा। कहता है 7 आत्मा है। ये क्या हो रहा है? ये न्याय है, न्याय के साथ साथ, लेकिन कौन है ये जो यीशु मसीह है? किस प्रकार से वो उस समय रह करके, क्योंकि उसने अपने जीवन को इस प्रकार से प्रदर्शित किया है, प्रकट किया है, वो ऐसा करेगा। और तब आगे चलकर कहते हैं, सिंहासन के चारों 4 प्राणी थे जिनके आगे पीछे आंखें थी। इन 4 प्राणियों का वर्णन हम इज़कील की पुस्तक में पाते हैं। इज़कील उसका पहला अध्याय उसके 10 पद में इन चारों को पाते हैं। बार बार इनका कई जगह वर्णन है। और ये 4 प्राणी कौन है? 4 प्राणी, पहला प्राणी सिंह है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान है, चौथा प्राणी उकाब के समान है। ये 4 जो चित्रण है, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवाएं हैं। और प्रभु यीशु मसीह की सेवाएं ये जो चारों सुसमाचार वर्णन करते हैं। मत्ती का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को सिंह करके प्रकट करता है, राजा करके, कि वो राजा है। मरकुस उसकी दृष्टि में वो एक बैल के समान, ऑक्स के समान है, बछड़े समान है, जो उसकी सेवा को देखते हैं किस प्रकार से उसने इस पृथ्वी पर रह करके सेवा की है। तीसरा जो है, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, किस प्रकार से वो मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान किया, वो सेवा जो परमेश्वर ने, प्रभु ने मनुष्य के समान पूरी करी है। तब उसके बाद चौथी प्राणी जो है उकाब, ईगल, इंग्लिश में जो शब्द आया है वो ईगल के समान है। किस प्रकार से? वो परमेश्वर के यौना, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसकी तुलना हम देखते हैं यौना सुसमाचार। सो चार सुसमाचार इन चार प्राणियों के रूप में प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है। किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सेवा की है और किस रीति से कराए। अब ये प्राणी क्या लिखा है? इन प्राणियों में से प्रत्येक के छह छह पंखते, उनके चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें थी। वे दिन रात ये कहते नहीं थकते थे। क्या कह रहे हैं? पुत्र पिता की महिमा और आराधना कर रहा है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम ये बात को देखते हैं जब पुराने नियम देखते हैं तो पुराने नियम में अधिकतर पहले ये देखते हैं कि परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके प्रदर्शित किया गया, खास तौर से जब तक उसने अपना नाम नहीं दिया था। यहोवा नाम निर्गमन की पुस्तक में पाते हैं जो परमेश्वर के द्वारा खुद दिया गया है, मैं यहोवा हूं। लेकिन उससे पहले, निर्गमन से पहले, उत्पत्ति के जब पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में वहां परमेश्वर के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके आया है। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं जो निर्गमन से पहले लिखी गई थी, उत्पत्ति के साथ साथ लिखी गई थी, उसमें करीब 39 बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके आया है। तो पहले उन्होंने परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर जाना था, बाद में परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया। सबसे पहले मूसा को प्रकट किया कि मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यहोवा। अगर आप निर्गमन उसके 3 अध्याय, निर्गमन उसके 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस रीति से। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, क्या है? ना केवल ये सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसके लिए क्या लिखा हुआ है? जो था, जो है, जो आने वाला है। वो हमेशा हमेशा था परमेश्वर, वो उस समय भी, आज भी, और जो आने वाला है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रि एक हैं। इन तीनों ने साथ मिलकर के समस्त योजना को पूरा किया है, समस्त कार्य को पूरा किया है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, ठीक है वो देह बनकर इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, लेकिन पौलुस कहता है उसने अपनी आत्मा को हमारे लिए चढ़ा दिया। परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया। और हम इस स्थान को देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होने वाला है। धीरे धीरे आने के बाद जब समाप्त होगा तो सब फिर मिलकर के एक ही साथ एक हो जाएंगे। अभी कुछ समय के लिए, सेवा काल के लिए, कुछ लोगों को हम अलग अलग दृष्टि देते हैं। एक ही है लेकिन तीन अलग अलग सेवाएं देख रहे हैं, तीन अलग अलग उनके कार्य देख रहे हैं, पर बाद में हम चल के देखते हैं कि वो सब एक ही हो जाएंगे। तो 9 से 11 लेकर अब ये लोग उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर आराधना के योग्य है, परमेश्वर महिमा के योग्य है। जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीन चीजें हैं। आराधना उपासना अलग है, धन्यवाद देना अलग है, प्रार्थना करना अलग है। और विश्वासियों को सीखना चाहिए, हम प्रार्थना, धन्यवाद, उपासना तीसरों को मिला देते हैं। जब हम आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने मेरे लिए क्या रहा, मेरे लिए करा, मेरे लिए क्या, और बाद में समाप्त करते हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम मांग नहीं रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं। धन्यवाद अर्पित किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। हम किन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं? उन कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। उदाहरण के लिए, एक छोटा बच्चा है, अगर उसको एक कप टॉफी देते हैं, अब माँ बाप सिखाते हैं उसको थैंक यू बोलो, तो हम धन्यवाद। तो जब हम आराधना करते हैं तो आराधना में जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं दानियेल की पुस्तक में भी बार बार हम परमेश्वर की आराधना को देखते हैं। पुराने नियम में कई जगह सैमुएल की पुस्तक में हम देखते हैं, किसी दाऊद कई बार परमेश्वर की आराधना करता है। सो परमेश्वर की आराधना, जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, महिमित है, वैभवशाली है, शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, अनंत है, उसके गुणों को हम देखते हुए, उसको देखते हुए हम जो है उसकी आराधना करते हैं। और यहां पर लेकिन जो उसने हमारे लिए किया है, हमारे जो उपकार किए हैं, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारी प्रार्थना को सुन लिया, हमारे जीवन में आश्चर्य कम किए, जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए वो हम मांगते हैं। तब हम कहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो तीनों को अलग अलग हमें समझना है, उसकी उपासना, उसकी आराधना करना, उसका धन्यवाद करना और उससे मांगना। इन तीनों चीजों का हमें सीखना है, समझना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जब हम उसकी आराधना को देखते हैं तो हमें हमारे जीवनों को उसकी आराधना के साथ सम्मिलित होना है। अब वो यहां पर क्या कह रहा है देखिए, जब जब ये प्राणी की जो सिंहासन पर विराजमान और युगों में जीवित है महिमा आदर और धन्यवाद करते, तब तक के 24 प्राचीन उसके सामने जो सिंहासन पर बैठा है गिर पड़ते और उसकी जो युगानुयुग जीवित है वंदना करते। एक मुख्य सिंहासन है, मेन बड़ा सिंहासन जिसमें परमेश्वर विराजमान है, बाकी 24 जो संसार के चित्रण है, विश्व का चित्रण है, विश्वासियों का चित्रण है, ये जब जब वो करते कह रहा है सिंहासन पर बैठा गिर पड़ते और उसकी जो युगानुयुग, कौन युगानुयुग जीते, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्रात्म, त्रिएक परमेश्वर, ये युगानुयुग जीवित है, वंदना करते और ये कहते हुए अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल दिया करते हैं। मेरे प्रियो, एक पद मैं और सामने लाऊंगा आपका, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। जब हम जीसस ओनली के साथ बात करते हैं, जो जीसस ओनली पर ज्यादा बातचीत करते हैं, उनको इस पद को समझना जरूरी है। तो उसको समझना चाहिए क्या यीशु मसीह सब कुछ है। यहां पर क्या कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसका मैं पढ़ रहा हूं 27 पद से, बल्कि 26 पद से पढ़ूंगा मैं। सबसे अंतिम शत्रु जिसका अंत किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ अधीन कर दिया है, तो ये स्पष्ट है कि जिसने, किसने, परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। किसके अधीन? पुत्र के अधीन। वो स्वयं अलग रहा, परमेश्वर पिता अलग है समय, 28 पद। और जब सब अधीन हो जाएगा तो पुत्र, जब सब कुछ, जो कुछ भी है सब कुछ अधीन हो जाएगा, तो पुत्र स्वयं उसके, किसके, पिता के अधीन हो जाएगा। जिसने सब कुछ, जिसने, किसने, पिता ने सब कुछ उसके पुत्र के अधीन कर दिया, जिससे कि परमेश्वर ही सब में सब कुछ हो। तो कितने बार और कितने लोग जो जीसस ओनली मानते हैं कि यीशु ही सब कुछ है, यीशु की सच नहीं, नहीं, एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ पिता की अधीनता में हो जाएगा। पुत्र को कुछ समय के लिए, मनुष्य, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि उसने कुछ समय अपने आप को स्वर्गदूतों से कम किया। प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से कम होकर मनुष्य बनकर स्मृति पर आए, लेकिन एक समय आएगा कि जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, सारी योजना परमेश्वर की पूरा हो जाएगी, सारा कार्य पूरा हो जाएगा, तब त्रिएकता एक साथ इकट्ठा हो जाएगी। इसको समझना है। और इसलिए हम किसी भी रीति से ना केवल यीशु का अलग करते हैं, ना केवल यहोवा का अलग करते हैं, ना पवित्र आत्मा का अलग करते हैं। और आज अलग अलग शिक्षाएं हैं जिन शिक्षाओं को हमें सावधानी से समझना है और उनको उत्तर देने के लिए तैयार होना है। तब यहां पर देखिए कहता है, सिंहासन पर वंदना करते और ये कहते हुए अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल दिया करते थे सारे 24 प्राणी जो विश्व को संकेत, अर्थात समस्त के सारे लोग उसके सामने झुकेंगे। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, एक दिन हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है, वो करेंगे। और तब 11 पद में, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, ये उसकी आराधना है, तू ही महिमा आदर सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुओं को सृजा और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी इच्छा से हुई। तू ही आदर महिमा सामर्थ्य के योग्य है, तू ही परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू ही सामर्थ्य के योग्य है, तू ही सर्वाधिकारी है, तू ही सृष्टिकर्ता है, तूने सब कुछ को सृजा, इस संसार की जो कुछ भी है सब कुछ को तूने सृजा है, मुझको तूने सृजा है, हमें बनाया है, और इससे हम तेरी आराधना करते हैं। कहता है और उनका अस्तित्व जो उनकी सृष्टि में दिखाई देता है वो तेरी ओर से है। सो परमेश्वर सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ है। और अब यहां पर 4 5 अध्याय में भी कुछ इसी तरह चाहिए, लेकिन 5 अध्याय फिर एक कदम आगे हम बढ़ेंगे कि अब जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उस चीज को देखते चले जाएंगे किस प्रकार से वो पर्त बाई पर्त वो चीजें खुल रही हैं और किस रीति से संसार को होकर जाना पड़ेगा, क्या क्या संकट होंगे, कैसे होगा, और किस रीति शैतान इस संसार पर हावी होगा, और खास जो लोग रह गए हैं पृथ्वी पे उस समय कुछ लोग विश्वास में भी आएंगे, उनको भी सतावनी का सहना पड़ेगा, किस प्रकार से क्लेश का सामना करना पड़ेगा। पर मेरे और आपके लिए एक खुशखबरी यह है जो मुझे और आपको उत्साहित होना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मैं बार बार कहता हूं मैं जन्म से ईसाई परिवार में पैदा हुआ था, मेरे को बचपन में बपतिस्मा दिया गया था, बड़ा हुआ तो मेरा कन्फर्मेशन हुआ, लेकिन उसने मुझे उद्धार नहीं दिया, उसने मुझे बचाया नहीं। मैं ईसाई तो था लेकिन मसीह नहीं था। पर धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को मैंने सुना, समझा, प्रभु ने मेरी आंखों खोल दिया, प्रभु ने मेरे मस्तिष्क को खोल दिया और एक चीज को मैं समझ सका, मैं पापी हूं और मुझे अपने जीवन में पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। और मैंने प्रभु की दया में होकर के अपने पापों से पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित किया और उस दिन उसने मुझे अपनी निज प्रजा बनाया, निसर्जा बनाया, निसंतान बनाया। उसने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने नहीं किया वो परमेश्वर की संतान नहीं। अगर परमेश्वर के संतान नहीं तो परमेश्वर की आशीष से वो वंचित है। जो परमेश्वर की आशीष हम उस समय देखने पाएंगे या प्रभु जब आएगा तो उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे कि आशीष से वंचित रहने पाएंगे। लेकिन धन्य है प्रभु जी वो लोग जिन्होंने ऐसा करा। मेरे प्रियो, आज भी आपके लिए अवसर है। यदि आपने आज तक अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, आप प्रार्थना के साथ अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप सकते हैं और तब उसकी आराधना और उसका उपासना जो आपके हृदय की गहराई से निकलेगी, जीवन से निकलेगी, वो परमेश्वर को आनंदित और महिमित होने पे। परमेश्वर हमारे शब्दों से बढ़कर के परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और हमारे जीवन को चाहता है। हमारा शब्द क्या है वो नहीं, लेकिन हमारा जीवन कैसे प्रभु के साथ समर्पित है। और प्रभु सहायता करें कि हम उसके आपको अपने आप समर्पित कर सके। सो यन्ना को परमेश्वर कुछ दिखा रहा है, स्वर्ग खोला गया है, परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया है, पद्मोस टापू से वहां पर पहुंच गया और अब किस प्रकार से परमेश्वर अपने भेद की बातों कर रहा है। प्रभु सहायता करें कि मेरे और आपके कि हम धीरे धीरे इन बातों को और अधिक समझ सकें। जैसे मैंने बोला था दानियल की पुस्तक में वो सारी बातें, बहुत सारी बातें मोहर बंद कर दी गई, लेकिन अब पांचवें अध्याय की अगर हेडिंग आप देखेंगे तो हेडिंग में लिखा गया है कि मोहर बंद पुस्तक और मेमना। अब वो पुस्तकें जो मोहर बनते हैं अब कैसे मेमने के द्वारा खोली जाएंगी, हम आगे आगे बढ़ेंगे, जब पांचवें अध्याय में देखेंगे तो हम उसको देखेंगे। सो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप उन 24 प्राणियों में सम्मिलित हैं जिसकी उपासना करने के लिए रात दिन तैयार हैं? क्या मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने उस मुकुट से शोभायमान किया है? क्या परमेश्वर ने मेरे और आपको श्वेत वस्त्र पहनाए हैं? क्या प्रभु ने अपनी शोभा से मुझे और आपको शोभावित किया है? अगर नहीं तो आपके लिए आज अवसर है। क्यों ना आप प्रभु से पश्चाताप करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें ताकि आप उसके निष्प्रजा बनकर, निस्संतान बनकर उसको आदर दे सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे।